ओम शांति।
ओम शांति। चाय पी आप लोगों ने? तो जोर से बोलेंगे ओम शांति। हाँ, अभी पता चला चाय पी आपने। सो एक सेशन बीच में जो मिस हुआ है, सबसे पहले मैं उनको बुलाऊंगा अभी, और वो थोड़ा सा आपको रिसर्च और फाइंडिंग्स के बारे में बताएंगे स्पार्क विंग के। डॉक्टर रामा जयम, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इक्समा सेंटर आईआईटी मंडी से, और काफी समय से बाबा के इस ज्ञान को फॉलो कर रहे हैं, और जो रिसर्च हुए हैं और जो फाइंडिंग्स हुए हैं उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। उसके बाद सेशन स्टार्ट होगा। तो मैं डॉक्टर रामा जयम को आपकी तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा। थैंक यू सो मच।
गुड इवनिंग। आर यू ऑल हियर? गुड इवनिंग। ओम शांति। So I am just going to take you all through different kinds of research findings. It's a kind of very tough task for me to take you through maybe 15 to 20 years of work in 20 minutes, but I'll try my best. So most of the things which I'm going to discuss today in the next 20 minutes, it's all carried out by different researchers in collaboration with SparkWing, where with some of the projects I am also associated. I am just presenting all the findings in front of you. Okay. So most of these findings, what I am going to discuss today, you may get it in this website, bkspark.in. I am just giving you only few of the findings. There are still many more. I am not going to discuss all the things because of time. So very broadly speaking, these are all the different objectives with which we are doing our Raj Yoga related research. One is, there are so many things related to spiritual lifestyle. Can we explore all those things in a scientific manner? Say for example, early morning meditation, and then even before going to bed we do meditation, and then food related practices. There are so many things. Can we explore systematically in a scientific manner all these kinds of spiritual lifestyle related stuff? So this is one of the main objectives. Another thing is, physiologically, can we understand different meditation states that people achieve in the name of meditation? Say for example, in yogic terms, people call in terms of samadhi, so many different terms they use, nirvana, kaivalya. So can we find out some kind of physiological signatures for these kinds of meditative states which people achieve in the name of meditation? Third thing is, there are so many different scientific tools that are used in scientific community for various kinds of research, but when it comes to Indian knowledge system and meditation related assessments, there are still many things that needs to be refined because of various reasons. The main reason being the knowledge related to spirituality and meditation itself, something very far different compared to what is usually studied in Western cultures. So in that sense, we are still lagging very much behind in terms of refined scientific tools to assess the changes that happen in the name of meditation, to capture them exactly as it is. So we are working on those lines also. Can we have some kind of assessment tools which are specific for meditation and related studies? And then we are also working on application of Raj Yoga in various disorders. So these are all the objectives with which we are working, and the different institutions we collaborate with, we generally provide conceptual framework for researchers and the researchers who are associated with various academic institutions, they carry out most of the work in collaboration with us, the SparkWing. So here I've just shown some of the institutions with which we have been working, like NIMHANS, then DRDO, AIIMS Patna, Indian Institute of Science, Manipal University, and some of the universities abroad also. So let me now start with different findings, the results of various studies that has been done. This is just only a few handful of studies. There are many other studies also. Just I picked a few. So one thing is related to meditators' ability to shift attention. In a day, if you see, we keep shifting our attention to different tasks. When you are at home, you take care of your children. When you go to your office, you have to look after your work. And then when you are in society, you have to behave in a different way. So it's basically a game of attention, shifting your attention from one to another thing. Throughout the day, this is what we are doing in a way. Okay. So what we have done in this is, we have taken long-term meditators and then short-term meditators. and they have been asked to just meditate for a minute and then they have to perform some stressful task. Alternatively, they have to keep doing this. 1 minute meditation and then a stressful task. So what we have observed is people who are long-term meditators, they are able to shift in a better manner seamlessly between different kinds of tasks. So that's the finding of this study. And better their capability to shift their attention, their well-being scores were also more. Both these things were connected. So that's about this study. This study is about, very commonly we all hear about a kind of equanimity between left and right part of the brain. So if I'm just using my right hand, the left part of the brain is working. And similarly, if I'm using the left hand, right part of the brain is working. So very crudely we say like this, but in practice, if you just look very deeply, for each and every aspect of actions that we perform, both the parts of the brain, both the hemispheres of the brain, they have to work in coordination in a beautiful way. So what we have done in this study is, in a structural manner, can we find something that connects these two hemispheres? Is there any change in that structural matter that connects between these two hemispheres in meditators? There is something called as corpus callosum, which is like a bridge between left and right part of the brain. Okay. So what we have observed is in long-term meditators, the connecting bridge between left and right hemispheres, you can see in the image also, the connecting bridge, it is actually the number of fibers there, it is more in long-term meditators, suggesting that there is better connectivity between left and right hemisphere. So this is something related to EEG and its findings. There is something called as alpha asymmetry. Alpha is one of the brain waves. Some of you would have heard about this. So in general, in people who have depression, major depressive disorder, the alpha waves in the left part of the brain and the right part of the brain, they show different kinds of findings. As you see in the figure, on top of the brain, left side, the red color wave and then the green color wave, they are at equal height. Whereas on the right hand side, on top of the brain, which is shown on the right hand side, you see the red color wave which is little higher in terms of peak compared to the green color wave. What it basically means is, there is increased amount of alpha on the left side of the hemisphere. When there is increased alpha, it means the brain is actually little hypoactive. So this is one of the established findings in depression. This is a general finding in depression. So in this study, what we have done is, in Rajayoga meditators, we tried to see what happens to this alpha asymmetry. So in long-term meditators, this reversal phenomena we are able to see. What is there in depression, quite opposite to that is what we see basically, which means the left side hemisphere, that is actually stimulated more, which can actually reduce the depression, which indirectly points to this fact that meditation, Raja Yoga meditation, can be used as a kind of add-on therapy to depression. So this is another interesting study related to gamma waves. Again, this is one of the EEG waves, gamma waves, high frequency waves we call. In general, what happens in aging, when one becomes older, the number of brain cells, they decrease. As a result of that, the perception related to sensory organs, all these things, it becomes dull, which we can observe in the form of they have decreased capacity for hearing, and then even their visual sense, that also decreases. So all these five sensory related perceptions, they come down. Okay. So when we show in front of these people something like gratings, what you see here, the alternate white and dark bands, this is called as gratings. When we show something like this in a screen in front of elderly people, the amount of gamma waves that are generated will be usually lesser compared to normal people, suggesting the number of brain cells is lesser in elderly population. So in this study, what we have done is, we have chosen long-term Raja Yoga meditators, and in long-term Raja Yoga meditators, we have shown these gratings, how much gamma waves they are able to induce. So the findings are, in Raja Yoga meditators, the amount of gamma waves that are induced are more compared to people who are non-meditators. Again, which is suggestive of, if one wants to age in a very healthy manner, preserving their sensory perceptual capacities, Rajayoga meditation can be one of the tools which they can use to preserve their or to delay their sensory deprivation, which happens as a part of aging phenomena. So gamma waves are found to be more in meditators compared to non-meditators. So this is an MRI study where we have assessed the amount of happiness with some standard scales, and also MRI was taken for all these long-term meditators. So the findings were the areas that are related to reward and then happiness processing centers in the brain. The brain volume in those areas were found to be more, suggesting that maybe they might be experiencing more amount of happiness, which was reflected in the subjective measurement through the scales also, happiness related scales. So this is another very sophisticated study where fMRI and the EEG were done together. Such kinds of facilities are available in only few centers across India. So this was performed at NIMHANS Bangalore, where long-term meditators were subjected to fMRI and also EEG simultaneously. And they were assessed to something called as microstate. What is this microstate? How the brain changes in a time scale of milliseconds. They usually call it as atoms of thought. If you want to read something in a very minute form related to thoughts, in a physical sense, from brain perspective, these microstates are usually studied. So what we have done in this is, what happens to these microstates in long-term meditators compared to non-meditators? This is what we have studied. The observation was, long-term meditators, they were able to stay in microstate for a longer time, and these microstates which were there for a longer time was found in default mode network. This is one of the brain networks that is very important for processing things related to the self, which very commonly happens in meditation. We process things related to self like I'm peaceful or I'm contented. So these kinds of thoughts are called as something thought processing related to self. So the default mode network is one network where we can see some activities related to self-processing. So in that network, the amount of time in which they were able to stay in the name of microstates were relatively longer in long-term meditators compared to non-meditators. So this is related to spinal cord injury, which was done in Indian Spinal Cord Injury Center, New Delhi. Around 100 patients were studied. So in spinal cord injury patients, mental health problems are very, very common. Since most of the people, they get bound to wheelchair or even for a longer time, they are bedridden. So mental health related problems like depression, anxiety, these are very, very common among spinal cord injury patients. So in this, we have studied about the quality of life and also anxiety, depression, all these kinds of symptoms in people who have sustained spinal cord injuries. So what we have found was, all these people who have sustained spinal cord injuries, after about 1 month of Rajayoga practice, their mental health symptoms, they came down, and their quality of life also got better. And we have not only studied these patients, we have also studied the caregivers of these people, because giving care for those patients, it is usually a long-term business. So they need a lot of rehabilitation also. So in that process, even the caregivers, they get stressed out and they do get a lot of mental health problems. So we have assessed some stress-related things even in caregivers, and caregivers also, they got their stress scores reduced after this Rajayoga intervention. So this is again related to another mental health condition called as panic disorder, where suddenly, all of a sudden, they would feel like their heart is racing like anything, and they'll feel as if they are going to die, even though they will not die. And they would in fact go to cardiologists and many different places. Finally, everyone would say that it's all in your mind. Finally, they'll come to psychiatrist. Such a condition is called as panic disorder. This was carried out at AIIMS Patna. Again, these patients with panic disorder, they were taught Rajayoga for about 1 month, and then they were assessed multiple parameters, including the clinical symptoms related to panic disorder and EEG, HRV, all those kinds of steps also. We found that these patients got their panic symptoms improved much better compared to people who were, the patients were not given meditation. So this is something related to developing some assessment tool. This was developed in collaboration with NIMHANS, Spark, and then connected with again Brahma Kumaris. So in this study, what we have done is, we have developed an application, mobile-based application, where you can track your thought process then and there in real time. So you can put all the kinds of questionnaires that you want to assess with the people, and you can automatize all those things. The notifications will come randomly, and whenever it pops up, they just need to answer a few questions, and in a cumulative manner, all these scores would be recorded, and you can just track like this for any number of days, weeks, months, or even years together. So this is what we call as experience sampling method, which we can use in this. So that's about some of the studies. There are many other studies also. Now let me just discuss a few ongoing research studies. One is related to Raja Yoga and then breast cancer. Generally in cancer, again, mental health related problems are very, very common, depression being the commonest thing. So this study is being carried out at AIIMS Patna in collaboration with SPARC. In this, what we are trying to study can there be any improvement in quality of life, and also something called as cytokines. Cytokines are chemicals that helps in the communication between two different cells. And these cytokines, these chemicals that help in communication between two different cells, they are very, very important for many physiological processes like inflammation, infection, pain, all these kinds of stuff, where because of which people many times they feel pain, fatigue, all these kinds of stuff. So we are parallelly assessing their mental health related symptoms, quality of life, and also some biological markers that are connected with these kinds of symptoms. So this is about assessing meditation proficiency through EEG related tools. So what we are doing is we are asking the meditators to perform meditation continuously, let's say 2 times in a day, like that, multiple days. And every time, is it possible for them to attain the same state, same mental state in the name of meditation? And if that is so, if it is possible, can we get some kind of signatures in the form of EEG that can be consistent? So once we develop this, it can be put into some mobile applications, and people who are learning new, they can track their progress through this neurofeedback tool. So this is another study where we are trying to find out, is there anything special related to early morning meditation compared to meditation that is done at other times? Because in Indian context, early morning meditation at Brahma Muhurta, that is something priced like anything. So is there anything special about that? This is another EEG study which we are trying to carry out. And this is about digital wellness. We all know that everybody is actually hooked to so many different kinds of gadgets. So Raja Yoga based digital wellness, can it be of any use for this modern society? So this is also done as a part of study where the entire course related to digital wellness is embedded in the college curriculum itself for the students. This is another MRI study where we are trying to find out how this brain related networks connected with internal awareness and then external awareness, what sort of balance they bring about, especially this meditation practice. So this is an fMRI study. This is a distance healing study which you would have heard yesterday in the inaugural session. It is going on the General Hospital, where we are giving good wishes for preterm babies. This is a randomized controlled trial. It is an ongoing study. This is another study which is part of PhD thesis at Rishi Hood University, where mental health related assessments are being done with Raja Yoga intervention, especially for school children. These are some of the service projects. It's not research study. The patients who are admitted in this hospital, which is at Orissa, they are being provided meditation service. People, when they go through radio and chemotherapy, they get a lot of mental health related symptoms for which Raja Yoga may be useful. So we are giving it as a service there. And this is another course which is being used in a college setup. Again, this is a part of their college curriculum, 2-credit course, where we are teaching them. So this Mansa Sakash program is a very large program at a national level that keeps on happening. And you can also even participate in this. You will get more details in the website. Thank you. So most of the people who are associated with this research, you may find most of them here. You can discuss with them and get more details. And you can get in the website also. Thank you.
थैंक यू सो मच डॉक्टर रामाजैन. और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद. तब तक आप लोग पहुंच गए, पूरा तो देखा नहीं होगा, फिर भी एक बार देर ना करते हुए डॉक्टर साहब का थैंक्स करने के लिए एक बार जोरदार क्लैप करते हैं. और जो भी हमारे आज के थीम के गेस्ट हैं, उनको हम इन्वाइट करते हैं आप सबकी तालियों के बीच. आज का जो थीम है, बैलेंस की टू परफेक्शन. और हमारे बीच में जो आज की नोट एड्रेस देने के लिए हमारी दीदी बैठे हैं, उनका नाम है राजयोगिनी आदरणीय बीकी अनीता दीदी, तो मैं उनको स्टेज पर इनवाइट करता हूं। दीदी आप पधारें। आप जोनल कोऑर्डिनेटर हैं स्पार्क विंग के पंजाब जोन से, और इसके साथ साथ डॉक्टर रवि कुमार धर डायरेक्टर जगन्नाथ इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्कूल वसंत कुंज दिल्ली से, बीके नीलिमा दीदी आप जहां भी हैं आप भी पधारें, आप जोनल कोऑर्डिनेटर स्पार्क तमिलनाडु से हैं, और डॉक्टर शंकर नारायण आप हार्टफुलनेस मेडिटेशन के लिए आज कुछ बताएंगे, ग्रीटिंग्स देंगे, आपको भी हम स्टेज पर इनवाइट करते हैं। तो आप सब जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करें, और अपने दीदियों से मैं चाहूंगा कि एक बार इनका जो गेस्ट है उनका बुके और बैजेस से स्वागत करें। डॉक्टर रमा जैन भी हमारे बीच में हैं, वो आदरणीय दीदी का स्वागत कर रहे हैं, और आप सभी डॉक्टर रवि कुमार धर वेरी डाउन टू अर्थ, डॉक्टर रामा जैन ने आप सबको कलेक्ट किया। मैं अपना स्वागत स्वयं कर रहा हूं। चलिए आज का जो टॉपिक है इस टॉपिक पर थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि आज जो बैलेंस की बात है इसके पहले जो सेशन सारे हुए हैं आप सबने बड़े ध्यान से सुना, और जब सेशंस हो रहे होते तो बीच बीच में हम लोग भी इसको देख रहे होते। थैंक यू सो मच, आपका भी स्वागत है। सो भारत धर्मों की भूमि है, कहते हैं सभ्यताएं इसकी गोद में पली हैं, ये वाणी की माता है, पुराणों की दादी है और परंपराओं की परदादी है। ऐसे भारत देश के निवासी आप सभी इस स्थान पर पहुंचे हैं और परमात्मा के घर में हैं, तो परमात्मा की तरफ से और भारत देश की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस सत्र में। और साथ ही साथ मैं एक युवक की कहानी इसके साथ जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि आज कीटू जो हमारा परफेक्शन टॉपिक है इसमें एक बहुत बड़े मुखर व्यक्ति के किसी बच्चे को गाने का बहुत शौक था, बस शौक था, गाना आता नहीं था। तो शौक और दोनों में बहुत अंतर होता है, और कहा जाता है कि दुनिया में अगर शौक है, साधन है, संपर्क है, तो सभी को अपनी हसरतों को पूरा करने का पूरा हक है, होना भी चाहिए। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे फनकार ऐसे हैं जिनके पास फन तो है लेकिन धन नहीं है, बहुतों के पास न मौका है और ना ही मंच है। लेकिन जब हम उसकी दूसरी तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि एक स्थिति ऐसी भी है जिसको हम कहा जाए कि एक वे दिखाता है, एक रास्ता दिखाता है, उसको हम कहते हैं ब्रह्मा कुमारी, जहां हम सबको मौका भी मिलता है और मंच भी मिलता है। और मौका और मंच दोनों के साथ साथ ये आपको अपने अंदर झांकने की एक तरकीब भी देती है। तो मैं अपने आप को देख रहा था कि हम सबको फुल टाइम अपने लिए कुछ न कुछ सोचना पड़ता है, काम करना पड़ता है, और जब ब्रह्मा कुमारीज हम ज्वाइन करते हैं तो यहां पर हर दिन हमारे सेंटर में हमको सिखाया जाता है कि आपको डाउन टू अर्थ होना है, कुछ नया करना है। अब नया करने का मतलब ये नहीं कि मैं चश्मा ऐसे लगाऊं तो मैं ऐसे लगा लूं तो मुझे देखने लग जाएं लोग, नया करने का अर्थ है कुछ हर दिन कुछ आप अपने अंदर परिवर्तन लाओ जिससे आपको लगे कि आप कुछ बैलेंस बना रहे हैं। क्योंकि हमारी लाइफ थोड़ी सी फॉर्मल है ना। फॉर्मल लाइफ का मतलब है कि जैसे कोई व्यक्ति रास्ते में चलते हुए, ये मैं अपने घर की कहानी सुना रहा हूं अपने फादर की थोड़ी सी, कि अगर रास्ते में चलते हुए उनको किसी ने नमस्ते कर लिया, अभी वो है नहीं शरीर में, नमस्ते तो बड़े प्यार से कर लेते थे, अरे बड़ झुक के बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, बाद में आगे जाके कहते थे यही सुबह सुबह मिलना था। तो उससे पता चलता है कि हमारी लाइफ में मतलब फॉर्मल लाइफ है, पूरी तरह से कैजुअल लाइफ है, और हमको परमात्मा सिखाते हैं बच्चों वाली लाइफ कि जो एक चहकता है, खुशी ला देता है, जिसके अंदर जिसके यहां आने से सारा कुछ बैलेंस हो जाता है। तो आज उसी टॉपिक को लेकर, की टू परफेक्शन को लेकर, बैलेंस को लेकर आज हमारे बीच में हमारी दीदी आदरणीय राजयोगिनी अनीता दीदी आएंगे और आपका थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय मैं आपको देना चाहूंगा। और एक कोइंसिडेंस इसमें आ गया है कि दीदी जब इस ज्ञान में आए 1979 में, तभी मैं पैदा हुआ। तो एक कोइंसिडेंस ये हो गया कि शायद एक परमात्मा की कृपा होगी तो दीदी ने 1979 में इस ज्ञान को लिया। आप स्टडी में आप बीए बीएड हैं और इसके साथ साथ दीदी पंजाब जोन के स्पार्क विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर हैं और सोनीपत रिट्रीट सेंटर एक हमारा बना है उधर, उसके आप फैकल्टी हैं। दीदी बहुत ही आपका एक कंडक्टिंग मोटिवेशनल टॉक सेशन ऑन मल्टीपल टीवी चैनल्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, दीदी का बहुत सारा कुछ प्रोग्राम आता है और खासकर बीकेज को जो भी हम सभी सरेंडर्ड हैं और बहुत गहराई से एक एक बात को रखते हैं। तो आज आप सबके बीच मैं दीदी का आह्वान करता हूं, आप सब एक बार जोरदार ताली बजाकर दीदी का स्वागत करें। आदरणीय अनीता जी,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तीन बार क्यों बोला हमने, ये भी एक बैलेंस बनाने के लिए। कौन सा बैलेंस? रिचुअल टू प्रैक्टिकल। हमने समझा हुआ है जो भी रिचुअल्स होते हैं ना, राम राम, ओम नमः शिवाय, वाहेगुरु, ये सब सिर्फ बोलने के लिए होते हैं और बोलो तो बेड़ा पार हो जाता है। लेकिन मेडिटेशन का जो लाइफस्टाइल है वो ये कहता है बोलने से बेड़ा पार नहीं होता, उसको पर्सनलाइज करना होता है, उसमें जीना होता है। ओम शांति बोला तो ओम हो जाना है। ओम मीन्स मैं एक आत्मा हूं, शांति मेरा धर्म है। उस फीलिंग में आ जाओ, पहले फील करो मैं एक शांत आत्मा हूं, फिर मुंह से बोलो, फिर उसके वाइब्रेशन फील करो। ये सिर्फ हाय हेलो नहीं है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं है, लेकिन एक प्रैक्टिस है। शब्द जब अभ्यास में आते हैं, जैसे कि फॉर्मूला लैब में जाता है तो प्रोडक्ट बना देता है, ऐसे ही ज्ञान जब जीवन में उतरता है तो वो जीवन को वो बना देता है जो हम चाहते हैं, सुखी, शांत, खुश, आनंदित, मौज में। नहीं तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत सारा दौड़ रहे हैं, पर वो नहीं पा रहे जो मिल जाना चाहिए था। बहुत दौड़ रहे हैं पर लगता ऐसा है कि जिस चीज को पाना चाहते थे वही दूर जा रही है, शायद उसी की तरफ पीठ करके दौड़ रहे हैं। आज का जो टॉपिक रखा है बहुत अच्छा है, बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए। एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि हर एक मानव के ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन बोलो। राइट ब्रेन इमोशनल है, लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल है, और जिसके अंदर दोनों एक्टिव है उसका जीवन सफल है। भारतीय संस्कृति में खास नहीं तो विश्व भर में भी हमेशा लेडीज का राइट ब्रेन एक्टिव होता था, जल्दी रो देती है, जल्दी हंस देती है, भावनात्मक है, म्यूजिक है, डांस है, डेकोरेशन है, कुकिंग है, बच्चा पालना है, सजना है, श्रृंगार है, लेडीज का सब्जेक्ट था और जेंट्स का सब्जेक्ट था युद्ध करो, विज्ञान में जाओ, धन कमाओ, राजनीति में जाओ। उनका राइट ब्रेन कम एक्टिव होता था, लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता था, इसलिए लेडीज ज्यादा पढ़ती नहीं थी। और जब शादी होती थी उसको कहा जाता था, जिस घर में तेरी डोली भेज रही है उस घर से तेरी अर्थी वापिस आनी चाहिए। शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को देखते भी नहीं थे और ताउम्र निभाते थे, डाइवोर्स तलाक शब्द तक सुनने को नहीं मिलते थे। फिर क्या हुआ, हम एडवांस हो गए, एडवांसमेंट में लेडीज भी पढ़ लिख गई और पढ़ लिख करके उनका भी लेफ्ट ब्रेन एक्टिव हो गया। अब दोनों तरफ लेफ्ट ब्रेन एक्टिव है, राइट ब्रेन दोनों तरफ मर्ज हो गया, हर जगह तर्क तर्क तर्क, बहस, आर्ग्यूमेंट्स। अब क्या होने लगा, शादी से पहले भी खुद सेलेक्ट करेंगे किससे करनी है, प्यार में ऐसे दीवाने होंगे उससे करो नहीं तो मर जाएंगे। इम्बैलेंस्ड, उसी से कर दी जल्दी डाइवोर्स हो जाएगा। अब तेरे साथ रहे तो मर जाएंगे, पहले तेरे बिना भी मर रहे थे। राइट ब्रेन एक्टिव होता है तो इम्बैलेंस, लेफ्ट एक्टिव होता है तो इम्बैलेंस, हर घर में डंडा बज रहा है। राइट ब्रेन कहता है झुक जाओ, लेफ्ट ब्रेन कहता है बी लॉजिकल, इस बात की भी रीजनिंग ढूंढो। तो रीजनिंग बुरी चीज नहीं है, सेंटिमेंटल होना भी बुरा नहीं है, लेकिन हर एक की एक लक्ष्मण रेखा होती है, कहां तक रेखा के अंदर रहना है और कैसे पैर बाहर निकालना है, दोनों की एक विधियां होती है। जब रावण नहीं है तो निकलो, क्या प्रॉब्लम है, घुमाओ दुनिया। रावण है तो अंदर रहो ना, जहां रिस्क है। तो हर एक को अपनी एक सीमा रेखा मालूम होनी चाहिए। 1947 में भारत देश आजाद हुआ, एक भाई खुशी में रोड पर गोल गोल छड़ी घुमाता घूम रहा था। किसी ने कहा भाई क्या कर रहे हो, लग जाएगी किसी को। वो कहता अरे अब तो हम आजाद है, जैसे मर्जी जाऊं घूमूं। दूसरे ने कहा भाई ठीक है आजाद जरूर हो, पर तुम्हारी आजादी वहां खत्म हो जाती है जहां से मेरी नाक शुरू होती है। आजाद जरूर हो, अधिकार के साथ आजादी में आपको आपके फर्ज भी मिलते हैं। आज इम्बैलेंस क्यों हुआ है, हर एक अपने अधिकार मांगता है, जतलाता है, याद रखता है और अपने फर्ज दूसरों पर थोप देता है। इसलिए कानून भी बेचारा कमजोर पड़ता जा रहा। बहुत लॉ पर्सन्स, एडवोकेट्स, जजेस जब भी मिलते हैं, हम उनको कहते देखो क्या जमाना आया है, लोग लड़ते घरों में हैं और लड़ाई का फैसला कराने आपके पास कचहरी में आते हैं लंबी लंबी फाइलें बना करके, और कानून को कहना पड़ता है अब आप ऐसे नहीं वैसे करोगे। अरे ये तो आपसी मामले थे, कहां बाहर निपटाने चल पड़े आप। इसके लिए चाहिए थी एक अंदर के निर्णय शक्ति, परख शक्ति, दो शक्तियां जो हम राजयोग में सीखते हैं, पावर टू डिसर्न, पावर टू जज। ये दो शक्तियां कमाल करती है जो हम राजयोगा मेडिटेशन में सीखते हैं। पर ये कैसे आती है, पावर टू जज, जजमेंट में तराजू दिखाते हैं। तराजू के दो पलड़े रहते हैं, जहां दोनों पलड़े इक्वल आ जाएं, बैलेंस्ड, वहां कहा जाएगा जजमेंट इज राइट। हाँ, आपसे 2 किलो चीज मांगी थी, 2 किलो का बाट इधर रखा है, 2 किलो चीज इधर डालिए, अब ये दोनों बराबर आते हैं, तुम ईमानदारी से वजन कर रहे हो, ठीक है, ओके। पर वो दो पलड़े बराबर हुए कैसे, कब हुए? जब उनके बीच में एक सेंट्रल पॉइंट आया, एक धुरी है जिसके ऊपर वो तराजू काम करता है, एक सेंट्रल पॉइंट है। तो यहां भी एक सेंट्रल पॉइंट हमको मिलता है जिससे राइट जजमेंट्स आती है, जीने का तरीका आता है। और वो सेंट्रल पॉइंट क्या आता है, हु एम आई, अपनी एक पहचान मिलती है, यथार्थ पहचान मिलती है। क्या मिलती है, आप कौन, ना स्त्री ना पुरुष, ना मम्मी ना पापा, ना बेटा ना बेटी, कौन हो, कौन है आप, कौन है आप, आत्मा। ये आत्मा क्या होती है, भारतीय संस्कृति इस पर आधारित है। किसी ने सुना हुआ है अर्ध नारीश्वर, अर्ध नारीश्वर सुना होगा जरूर। कामदेव मरता नहीं था, ना स्त्री से मरता है ना पुरुष से मरता है। कहते भगवान ने अर्ध नारीश्वर रूप धारण किया, आधा स्त्री बन गया आधा पुरुष बन गया, दोनों मिल गए आकर के, और जहां दोनों मिले वहां कामदेव भस्म हो गया। ये क्या होता है, हमने समझा हुआ है, भगवान या देवता जो होते हैं ना, बहुत बड़े मैजिशियन होते हैं, जो काम डॉक्टर भी नहीं कर सके ना। मेहता जी बैठे हैं, डॉक्टर साहब आप ऐसा बना पाएंगे, मेल फीमेल मिलाओ और इकट्ठा, बना सकते हैं, डॉक्टर नहीं कर सकते। तो हमने समझा हुआ भगवान मींस मैजिशियन। कोई था राक्षस मरता नहीं था, 2 मिक्स हुए, आधा मेल आधा फीमेल, और मार दिया और मर गया। हमें लगा हाँ ये रियली भगवान होगा, जो मैजिक करे तो भगवान है, नहीं करे तो नहीं है। कोई कोई पूछते है आपके यहां भगवान आता है, सच में भगवान आता है, हम मक्खी को मारे जिंदा कर देगा, कर देगा। भगवान जी सामने बैठे हो, मक्खी मार के उनके सामने रखो और भगवान जी ऐसे देखे और जिंदा हो जाए और हम कहे रियली यू आर गॉड, ठीक है, ठीक है। भगवान की परख इतनी सी होती है क्या, और भगवान आपके चैलेंज में आ जाएगा क्या, हे भगवान जी आपको तब मानो, इसको जिंदा करके दिखाओ, और भगवान जी डर जाएंगे, मैं कर दूं जिंदा, लगा दूं अपनी सारी शक्ति, नहीं तो ये तो मुझे मानने से ही गया, मेरे वोटों का क्या होगा। भगवान की कोई सीट है क्या जो आपका वोट न मिलने से चली जाएगी। आज सारा संसार भी भगवान को भगवान मानने से मना कर दे, भगवान का क्या जाने वाला है, सीट जाएगी नहीं जाती है, उसको मानने न मानने से फर्क नहीं पड़ता है। वो अपना कार्य क्षेत्र अच्छी तरह से जानता है। भगवान या देवता मैजिशियन नहीं होते है, लेकिन उनके डिसीजंस किसी मैजिक से कम नहीं होते है। आम मनुष्य जो निर्णय ना ले सके, जहां तक उनकी बुद्धि अप्रोच न कर सके, इम्बैलेंस्ड रहता है आम मानव, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में है तो मेल फीमेल देखता रहता है। लेकिन राइट जजमेंट, जहां बैलेंस आना है, वहां ना मेल है ना फीमेल है, सोल कॉन्शियसनेस है। आत्मा स्त्री पुरुष दोनों ही नहीं होती है। कामदेव मरना है, लस्ट, जिसके कारण से इतने कोर्ट केस है दुनिया में, इतनी प्रॉब्लम्स है, हर घर में बेटा बेटी बिगड़ गए है, हर घर में कहानियां है, कहीं डाइवोर्स है, कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, तो कहीं कुछ 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 लस्ट रूल कर रहा है दुनिया को। ऐसा राक्षस ना स्त्री से मरेगा, ना पुरुष से मरेगा, ना मेल कॉन्शियस इसको मारेगी, ना फीमेल कॉन्शियस इसको मारेगी, ना सेंटीमेंट्स मारेंगे, ना लॉजिक्स मारेंगे, बैलेंस मारेगा। कौन सा बैलेंस? ना मैं स्त्री हूं, ना मैं पुरुष हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। मैं जब ये प्रैक्टिस करती हूं, आज सुबह का अमृत वेला भी बताती हूं, जब ये प्रैक्टिस कर रही थी, अमृत वेला बैठते हैं 4 से 4:45, आई वॉज फीलिंग सो ब्लेस्ड, ब्लेसफुल, परमानंद, बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था ये मैंने चमड़े का कोट एक उतार दिया, अनीता मर गई, मर्ज्ड इन 5 एलिमेंट्स, ये कॉस्ट्यूम अनीता है, आई एम नॉट अनीता, आई एम अ ब्लिसफुल बीइंग, पॉइंट ऑफ लाइट, शुद्ध आत्मा, स्प्रेडिंग पीस एंड हैप्पीनेस अराउंड मी। वो जो फीलिंग आती है, वो जो अंदर से आनंद आता है, परम सुख आता है, उससे जो लस्ट से सुख मिलता ना, मिलता है तभी लोग भागते हैं उसकी तरफ, वो मर जाता है। अब नॉट रिक्वायर्ड, अब जरूरत नहीं है मजा लेने के लिए, मौज लेने के लिए, सुख और आनंद लेने के लिए। आप लस्ट में जाओ, ग्रीड में जाओ, खाऊं तो मजा, मकान कोठी मिले तो मजा, पोजीशन मिले तो मजा, मेरे लिए ताली बजे या वाह वाह बोले तो मजा, नॉट रिक्वायर्ड। मेरे लिए ताली बजाओ या गाली दो, आई एम स्टेबल। क्यों? ब्लिस इज देयर। सोल कॉन्शियस, जैसे ही आप सोल कॉन्शियस होते हो, यू आर अंडर द शावर ऑफ द सुप्रीम, कनेक्ट होते हो उनसे, एक ब्लिसफुल लाइट आती है, वो पावर अंदर जाती है। अब बाहर से लोभ मोह जो मजा देते है, मोह भी मजा देता है, मेरा बेटा तू कहीं ना जा, तेरे को देखती रहो मजा आता रहे, मोह है मजा दे रहा, पर पॉइजनस, शुगर कोटेड स्वीट, शुगर कोटेड पॉइजन है। मजा है पर अंदर सजा है, तेरे बिना भी नहीं जी सकते, तेरे साथ भी नहीं जी सकते। हाय मेरा बेटा बिगड़ गया, अब क्या करूं? बेटा थोड़ी रिप्लेस होता है भगवान के घर से, वही रहेगा, पर तेरे बिना जी भी नहीं सकते। एक मोह का मजा ले रहे हैं, एक लोभ का मजा ले रहे हैं, ईगो का मजा ले रहे हैं। हाउ ग्रेट एम आई, मानो सारे, जो मानते हैं तो मुझे मजा आ रहा है, नहीं मानते तो मैं दुखी हूं। अब ये सब क्या है? इम्बैलेंस। कभी हम लोभ की तरफ लुढ़कते हैं, कभी अटैचमेंट की तरफ लुढ़कते हैं, तेरे से सुख लूं, इससे सुख लूं, इससे मजा लूं, नहीं। इम्बैलेंस होने के बजाय एक धुरी की तरफ जाना, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, तो आत्मा के अंदर समाई 7 एनर्जीज गिफ्ट के रूप में मिलती हैं, जो हमें बैलेंस्ड कर देती है। आपने स्पिनिंग टॉप देखा होगा, लट्टू घूमता है एक सुई की नोक पर, ऐसे डालो डांस करता है, इतनी सी नोक पे कैसे घूमता है? अच्छे भले पैर वाले इम्बैलेंस होके गिर जाते हैं, क्यों? बिल्कुल सेंटर पर है उसकी नोक और पेट बहुत बड़ा है, परंतु वजन बराबर किया हुआ है। तो हम जो आत्मा है, हमारा भी पेट तो बहुत बड़ा है, फुल ऑफ 7 एनर्जीज। आत्मा के अंदर ज्ञान है, राइट नॉलेज, आत्मा के अंदर सुख है, शक्ति है, शांति है, लेकिन पहले उसके कॉन्शियस होना पड़ेगा। बॉडी के भी हम कॉन्शियस होते हैं, मैं मम्मी हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं फलाना फलाना हूं, कॉन्शियस होते है तो उसका इम्बैलेंस आता है। इम्बैलेंस किसको कहेंगे? अब भी सुखी, अब भी दुखी। आपने बोला अनीता बहन जी आप कितने अच्छे, आई एम स्माइलिंग, मैं बहुत खुश। दूसरे ने बोला बहन जी ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, आपको बोलना ही नहीं आता, मैं दुखी। लो गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना दास, ये क्या हुआ? जैसा आप मेरे को बनाना चाहो, रिमोट आपके हाथ में मेरी जिंदगी का, आप चाहो तो मैं सुखी, आप चाहो तो मैं दुखी, इम्बैलेंस। इसलिए अपनी आंतरिक शक्तियों के बल पर जिंदगी का आनंद लेना, आंतरिक शक्तियों के बल पर, आत्मविश्वास के बल पर, परमात्मा शक्ति के बल पर जिंदगी का सच्चा आनंद जो लेता है वो है रियल बैलेंस, और उसी से ही हमारा जीवन परफेक्शन की तरफ जाता है। परफेक्शन मतलब जो चाहिए मजा आता है, नहीं तो एंडलेस चाहिए चाहिए। एक इच्छा पूरी हुई 10 और पैदा हो जाती है, जितना ज्यादा मिलता है खाली होते जाते हैं। आज मल्टी मिलियनर भी, रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड भी कमा रहे हैं। अरे भाई, यू आर रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, क्या जरूरत है कमाने की? बांटना शुरू करो। नहीं, कमाना बंद किया तो टॉप पे कोई और आ गया तो खतरा वहां भी है। लो फिर क्या मिला? अभी तक भी गाना नहीं गाया, पाना था सो पा लिया। ओके नाउ, अभी भी ओके नहीं होता है, क्योंकि बाहर से जो मिल रहा है आउटसाइड इन अप्रोच कभी ओके करने नहीं देगी। अब जरूरत है इनसाइड आउट अप्रोच, तो बैलेंस्ड लाइफ। कभी मत को फलाना रिस्पेक्ट दे, प्यार दे, सुख दे, टाइम दे, केयर दे, आउटसाइड इन अप्रोच पेट भरने नहीं देगी। उसके बजाय मैं प्यार दूं, मैं रिस्पेक्ट दूं, मैं केयर दूं, टाइम दूं, कोऑपरेट करूं, तो ये इनसाइड वाला जो खाना ना अंदर, ये काम करेगा और बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो वास्तव में इससे परख शक्ति ठीक होती है, कहां मुझे देना है, कहां से मुझे लेना है, कहां मुझे कैसे स्टेबल रहना है। तो बैलेंस मीन्स स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मीन्स राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग मीन्स राइट जजमेंट, राइट जजमेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन, राइट सेलेक्शन, राइट डिसीजन हर एक बात में सक्सेस की फीलिंग देता है। सक्सेस डजंट मीन कि जो चाहिए था वो मिल गया, सक्सेस डजंट मीन्स जो चाहिए था वो मिल गया, सक्सेस मीन्स जो मिला ठीक लग रहा है, जो मिला वो मुझे ठीक लग रहा है। एक बहन आई हमारे पास, दीदी आईएएस का एग्जाम देने जा रही हूँ, जो मेरा प्री था वो तो क्लियर हो गया, अभी मेंस होना, आपका ब्लेसिंग चाहिए। का ब्लेसिंग में क्या चाहिए दीदी? सक्सेस चाहिए। डू यू मीन बाय सक्सेस? कहते हाँ, पेपर क्लियर हो जाए। हमने कहा जिन जिन का इस संसार में आईएएस का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, वो सारे लोग इस संसार में असफल लोग है ना। फिर इसका मतलब तो एक गरीब आदमी बिल्कुल असफल है, या कुछ और बन गया तो असफल है। सक्सेस मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ माइंड। तो फिर अब नहीं हुआ तो नेक्स्ट जो आपका एफर्ट है वो ठीक डायरेक्शन में जाएगा और ठीक सफल हो जाएंगे। तो इसलिए उम्मीद करते हैं आप फिर से अर्ध नारीश्वर रूप से सोल कॉन्शियस होके ये समझ पाएंगे कि आंतरिक गुण और शक्तियां जीवन के हर क्षेत्र में हमें संतुलन और सफलता देती है। ओम शांति।
थैंक यू सो मच दीदी, आपने बहुत सुंदर आईना हम सबके सामने रखा। दीदी जो बात सुना रहे थे, तो इसके लिए एक छोटी सी बात याद आई कि कौन कहता है कि दीदार नहीं होता? वाह वाह बोलो। फिर कौन कहता है कि दीदार नहीं होता? आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता। अगर उसको पाना है तो प्रहलाद बनो, ऐसे ही नरसिंह का अवतार नहीं होता। तो दीदी ने एकदम परफेक्ट प्रहलाद को जो दिखाया जाता है ना, जो पांचों एलिमेंट्स को, उनको अग्नि में डाला गया, पानी में डाला गया, तो जले नहीं, वो एक्चुअली आत्मा की बात ही है ना दीदी, जिसमें वो व्यक्ति पूरी तरह से पांचों तत्वों के साथ जोड़ा गया उसको। तो प्रहलाद एक सोल की कहानी है और इसको मैं छोटा सा, जैसे दीदी ने एक ईगो की बात कही, हम सभी के घरों में होता है। और मैं नेचुरल एक छोटी सी स्टोरीज के साथ जोड़ूंगा कि जैसे कुकिंग हम लोग करते हैं, घर की बात सुना रहा हूं मैं अपने, तो कुकिंग करते हुए जैसे होता है भाई, कई लोग खाना खाने बैठे तो कहते हैं अनुज आपने दाल बहुत अच्छी बनाई। तो मैंने दाल बनाई भी नहीं थी, लेकिन वो कहा उन्होंने, क्योंकि हम ही वहां पर सर्व कर रहे थे, बोलते रहे थोड़ी देर, मुश्किल से 3-4 मिनट बीते होंगे, जो सुन रहा था उसको रहा नहीं गया, उसने कहा दाल इन्होंने नहीं बनाई, दाल मैंने बनाई। वो मेरी मम्मी। अच्छा, थोड़ी देर बाद उनके अलावा भी कोई आ गया, कहते अच्छा कहा किसने था ये वाली दाल बनाने के लिए। तो आप देखो कि कोई किसी को भी स्पेस नहीं दे रहा है। जैसे कहा जाता है कि अगर 320 गज का आपका मकान है तो 10x10 के कमरे में रहते हैं, बाकी में ईगो रहता है। तो ऐसी स्थिति हम सबकी आजकल चल रही है। जो आज जैसे दीदी ने बहुत अच्छी बात बोली ना, परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति, और जो शिव बाबा ने हम सबको दिया ना, परमात्मा ने जो हमको दिया, तो उसके लिए एक बड़ी अच्छी बात याद आती है कि अगर इश्क करना है तो खुदा से करो, अगर इश्क करना है तो खुदा से करो, न खौफ जुदाई का न खतरा बेवफाई का। सो सारे संसार में एक चीज है, सारा संसार प्रतिक्रिया पर चल रहा है। अब एक लाइव स्टोरी है, अभी 2-4 दिन पहले की घटना है कि हम ऐसे वॉक कर रहे थे और एक भिखारी आया भीख मांगने, तो कह रहा बाबूजी कुछ दे दो। मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैं अपना वॉक करता रहा। थोड़ी देर बाद वो चला गया। तो सामने जो इस साइड एक मकान है कोने का, तो वहां पर गया, तो वहां जो केयर टेकर वो बाहर ही बैठा हुआ था, कहता बाबूजी कुछ खाने को दे दो। कहे खाने के लिए यहां रखा है? फिर दोबारा बोला अच्छा रोटी दे दो। कहते यहां रोटी रखी है? कहता 100 रुपए दे दो। कहे यहां 100 रुपए रखे हैं? कहते अच्छा थोड़ी कपड़े ही दे दो। यहां कपड़े रखे हैं? तो कहते फिर यहां क्या कर रहे हो? चलो हम दोनों मांगते हैं। सो एक चीज उससे समझ में आ गई कि इस दुनिया में सारा संस्कार प्रतिक्रिया का है। क्रिया हमको मुक्त करती है, प्रतिक्रिया हमको बांधती है। जैसे अगर किसी चीज पर आप ध्यान ना दो तो चला जाएगा, अगर आपने उस पर ध्यान दिया तो माना आप हो और आप राजी हो। इसीलिए फुल टाइम जो दीदी ने इतना सुंदर एग्जाम्पल दिया कि हम सभी जो परखने और निर्णय करने की दो शक्तियां हैं जो परमात्मा हमको सिखाते हैं, आज हम परख नहीं पाए। ऐसे हमेशा एक फिल्मी गीत है कि मैं करता रहा दुनिया की कही, साईं राम भाई साहब है ना, आपने बहुत अच्छा गाया इसको, मैं करता रहा दुनिया की कही, मेरी बात मेरे दिल में ही रही, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं। तो ये स्थिति है हम सबकी, और दीदी ने जो बताया ब्रह्मा कुमारी पूरी तरह से इसको इसी पर काम करती है, ये जीवन है इसका। सो दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं, हमारे गेस्ट स्पीकर डॉक्टर रवि कुमार धर, आप PhD हैं मॉडर्न ब्रिटिश फिक्शन में, और आपने पोएट्री भी एक लिखी है द चैंट ऑफ विस्ता, और डायरेक्टर हैं जगन्नाथ इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्कूल वसंत कुंज में, दिल्ली में। अच्छा, डॉक्टर साहब की एक बहुत बड़ी विशेषता है, डॉक्टर साहब कश्मीर से हैं और इनको उर्दू भी लिखनी पढ़नी बोलनी आती है, पंजाबी बहुत अच्छी आती है, इंग्लिश तो खैर आती ही है, हिंदी इन्होंने सीख ही लिया है, शायद भाषण तमिल में करेंगे डॉक्टर साहब। सो डॉक्टर साहब बड़े ही डाउन टू अर्थ हैं, और हमने कहा थोड़ा ड्रेस चेंज कर लो कि डायरेक्टर लगो आप, तो कहते नहीं इसी पर ठीक है, मुझे डाउन टू अर्थ ही जाना है। तो इनके लिए जोरदार ताली बजाकर इनका।
ओम शांति शांति शांति। अभी अभी हमने अनीता दीदी को सुना, मुझे नहीं लगता इसके बाद कुछ कहने की आवश्यकता होनी चाहिए थी, परंतु समय का चक्र ऐसा है कि जिस युग में हम जी रहे हैं वो इतना कॉम्प्लिकेट हो गया है जो सिंपल चीजें थी वो कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो वेदों में जो वाणी थी वो सभी को समझ आ जाते। और क्योंकि मैं एक पोएट भी हूं, वेदों की वाणी पोएटिक है, सिंबल्स को यूज करती है, सिंबॉलिक है, जहां से रिचुअल का जन्म हुआ। मगर जैसे जैसे समय का काल चक्र जैसे जैसे घूमता गया तो मनुष्य अपनी क्षमताएं भी लूज करता गया। जो बात वो सहज ढंग से समझ सकता था पोएटिकली, वो उसको अब समझ में नहीं आने लगी, जिसके कारण एक अंधकार का डार्क एजेस भी आई और उसके बाद रेनेसा आया। रेनेसा के बाद जन्म हुआ साइंस का, और जब साइंस का दौर शुरू हुआ तो एक बाइनरी का जन्म किया दिया गया हिस्टोरियोग्राफी में। वो बाइनरी ये कहती थी कि एनीथिंग दैट प्रिसीड्स द डेवलपमेंट एंड द एवोल्यूशन ऑफ साइंस इज प्री हिस्ट्री, मतलब वो हिस्टोरिकल है ही नहीं, दैट इज प्री हिस्ट्री, दैट इज द एज ऑफ ऑब्स्क्यूरेंटिज्म, दैट्स द एज ऑफ रिग्रेशन, दैट्स द पीरियड ऑफ सुपरस्टिशन, जिसके कारण जब हमारे आक्रांता आए वेस्ट से और उन्होंने हमारी सेक्रेट टेक्स्ट को इंटरप्रेट करना शुरू किया तो उन्होंने कहा वेदास आर द ब्लैबरिंग्स ऑफ अ सैवेज रेस। कुछ गलती हमारी भी थी, क्योंकि हम उनके मर्म को खुद भी नहीं समझते थे, जिसके कारण हमने वेद को कर्मकांड तक रिड्यूस कर दिया, रिचुअलिस्टिक, एंड इट बिकेम वेरी इजी फॉर द वेस्टर्न मैन टू डिसमिस ऑल दीज टेक्स्ट एज द ब्लैबरिंग्स ऑफ अ सैविज रेस। साइंस बढ़ती गई और आज के युग में जब 21st सेंचुरी है, दो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हिस्ट्री में सामने आ रही हैं विच थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन रेस। उसमें बायोटेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जिसका आधार जेनेटिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो ब्लॉसम कर रही है इन द फॉर्म ऑफ एआई एंड रोबोटिक्स। और इसी युग का एक व्यक्ति है जिसका नाम है युवाल नोआ हरारी। कईयों ने आपने उनकी बहुत ही एक फेमस पुस्तक पढ़ी होगी सेपियंस। ही इज द चाइल्ड ऑफ द मॉडर्न एज, द साइंटिफिक एज, and he posits something like this. He says God is dead, science has killed God, this is all rhapsodic mumbo jumbo religion is nothing but a rhapsody. The time of organic, carbon-based life forms, matlab hum, is over. The time for inorganic, silicon-based life forms is on the horizon. It is already there. Iski faint glimmerings sabhi ne dekhi hain in the form of chat GPT, in the form of AI, and to put it in the words of Elon Musk, by 2029, February 2029, 6 months plus, 6 months minus, the world will be a witness to the emergence of artificial general intelligence. Is samay jis AI ki ka hum use kar rahe hain, that is Gen AI, generative artificial intelligence, इसलिए इसको हमें AGI के साथ confuse नहीं करना चाहिए. Generative AI is based on LLMs, large language models, जबकि AGI is based on the development of intelligence to such an extent that AI will be far more than 100 times intelligent than the human race. आप कल्पना कर सकते हो ऐसे संसार की जहां पे इंसान को कंपीट करना है एक ऐसी शह के साथ, एक ऐसी एंटिटी के साथ जो कि 100 टाइम्स मोर इंटेलिजेंट देन हिम और हर है. देन अनदर 15-20 इयर्स we will have ASI. What is that? Artificial super intelligence. And alongside is the development of self-learning machines. So enter the brave new world as Aldous Huxley spoke of. Aise mein, how do we receive this challenge? And this man, Yuval Noah Harari, says 90% of the human race is useless. Main aage bolna nahi chahta because these are dangerous things. Because there is an organization, I don't know how many of you go into this, which has a very clear-cut plan of depopulating the planet. These are the kinds of asuric age forces that are taking birth and which are using science for this purpose. So when you will be vaccinated, in Japan recently a case has been filed by the government of Japan. Against pharma companies, based on which it is said that when the vaccination was done, sensors were put inside the body. सो आपका पूरा यू वोंट नो एज मच अबाउट यू एज दे विल नो अबाउट यू. फॉरगेट द फुटप्रिंट्स दैट यू लीव ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब. वहां से तो आपकी ट्रैकिंग हो ही रही है. गूगल इज ट्रैकिंग यू ऑल द वाइल. अपार्ट फ्रॉम दैट, द मोमेंट एन इंटेंशन इज बॉर्न इन योर माइंड, इवन यू वॉन्ट बी अवेयर दैट एन इंटेंशन वॉज बॉर्न इन माई माइंड बिकॉज इट इज इनकोएट. बट दैट सेंसर विल कैच इट एंड इट विल बी रिसीव्ड बाय एआई. क्या इज दिस द फ्यूचर? नो, आई डोंट अग्री. बीइंग अ स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पर्सन, आई डोंट अग्री विद दिस वर्शन ऑफ युवाल नोआ हरारी. व्हाई? द ह्यूमन बीइंग वॉज क्रिएटेड आफ्टर trillions of years of nature's experimentation in the lab of nature. The evolutionary forces, call it revolution, yes, revolution, but then within that revolution is also evolution. Because the wheel keeps moving. So when you start from the bottom and move up, that is evolution, but that is contained within the revolution, the yuga cycle. And the beauty of the human body is that it has immense potential. There is so much of redundancy within the human body as an organism, as a part, as a system of organs, and at the physiological level. And I'm saying it on the basis of my discussions with Dr. Ramesh Bijlani, who was the former head of the Department of Physiology at AIIMS New Delhi. If man has so much potential, then how can man be wiped off the surface of the earth by the machine? Where is the problem? Why is man not rising to meet this challenge of the machine? Why are we kneeling down to even that faint glimmering of an AI in ChatGPT? सभी को देखो, ChatGPT ही हमारे बच्चों के आजकल असाइनमेंट से लिख रहा है. प्रेजेंटेशंस भी चैट जीपीटी से ही बन रही हैं. सब कुछ. वी आर मॉर्गेजिंग आवर इंटेलेक्ट, आवर थिंकिंग, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल एबिलिटीज, थिंकिंग एबिलिटीज ऑल्सो टू एआई. आई डोंट थिंक दैट मैन इज इन एनी वे इनफीरियर टू द रोबोट्स दैट आर बीइंग बिल्ट on the basis of AI, क्योंकि उनकी जो neurons उनके create किए जा रहे हैं, synapses, they are a fraction of what is there in the human brain. But they are being trained well. So somewhere our education is failing. Somewhere we are not recognizing our own potential. And somehow this is my firm conviction, my firm belief that the human being is far better, far more powerful than a machine. The only problem is that we invested more of our time in objective reality, not in the subjective reality. We invested more of our time in the external reality, the macro reality, not in the micro, inner, subjective reality. Science, despite all its claims of rationality has been irrational. When it has dismissed the human body, and so much so that when it talks of the spirit and energy, it localizes it within the confines of the human body. Can energy be contained by anything? Energy is permeable. It is a sea. Our Vedas say that there are seven lokas, and each of these lokas are like an ocean. That's why the word used is Sapta Sindhu. So each of the planes of existence is an ocean. It is our misfortune that we did not invest our time in understanding our spiritual and intellectual heritage. If we did, we would have got to know that the science of spirituality, that's why I'm moving away from the religious terminology, is the science of existence. The moment you use religious terminology, you make yourself vulnerable to criticisms from the pseudoscientist. I call them pseudoscientists because they have their own irrationality. So the need of the hour is, science has developed so much that it can turn a machine into far more powerful than a human being. Think of what science can achieve if it were used to invest its time and energy on the human body, to exploring the potential of the human body. This is something that Nikola Tesla also once said. That if science had invested even just 30 years of its time on understanding the mechanics of energy, then it would have achieved far more results than the 300 years it spent on understanding matter. So that is what I mean to say. And herein the significance lies in, I know, can you give me 2 minutes or 5 minutes? 1 minute. Okay, so I have very little time because I've just predicated my statement. My contextualized, my framed my thesis. So thesis is yet to follow, but some other time. But I will just give you a statement of it. And that is, I give often an equation. I refer to an equation. 0 is equal to x plus minus x. If you look at this equation, it explains the thesis of creation given in the book of Genesis, in the Bible. It also explains the Vedic or Vedantic theory of creation. Because 0 is the point of nothingness, but it is seeming nothingness, as mathematicians would tell us, that 0 is the other face of infinity. But when you look at it, understand 0 from the religious point of view, you realize that 0 on the one hand side of the equation is 0, on the other side is x and minus x. So what is x and minus x? Opposite duality. This is the world of duality. And 0 is the world which transcends duality, and yet this duality is born out of 0. So mathematically it is possible. So out of nothing, something is being born. Then what is this 0? Na papam na punyam, na dukham na sokhyam, na mantram na vedam na... Na mantram na tirtham, na vedam na yagna, Chidanand Rupam Shivoham Shivoham. It is the point of balance. It is the point of Shiva consciousness. Because it transcends all attributes of the dualistic reality, be it X or minus X. The same thing presented in Guru Granth Sahib Ji. Pavan Guru Pani Pita Mata Dhart Mahat Divas Raat Dui Dai Daya Khela Sakal Jagat. But the important thing is not to negate one for the other. That is because, again, intellectual heresy. To say that zero is truth and X and minus X, the dualistic reality, is not truth, is again a heresy. And here again I would like to quote Guru Nanak Dev Ji, Kar kar vekhe sirjanhar, Nanak, sacche ki saachi kar. Both are true. Then where is the problem? The problem is getting anchored in this zero consciousness. When you get anchored in zero consciousness or in the Shiva consciousness, to use a religious terminology, and operate in the world of duality, then what do you become? You become Arya. And do you know, this land was called Aryavrat. So Arya is not a race. Arya is one who is effective in action because the consciousness with which he operates is not a mental consciousness, but a supramental consciousness, which is Shiva consciousness. So just by his sankalp shakti, he can make things happen. And that is what the rishis of yore used to do. And that is the kind of perfection we need to strive at. Some other time about further explication of this concept. Thank you.
Thank you so much, Dr. Sahib. There are three levels of existence. First one is physical, the second one is physiological, and third one is psychological. So Dr. Sahib ne tino level ko apne hisab se hum sab ke beech mein rakha. Dr. Sahib, ek baat main kehta hu na ki kehte hain jab tak aapki kurte mein jeb hai tab tak aapko sant kehna fareb hai. So इसीलिए आपने जो मरने की बात की ना, भाई ठीक है, अपने आप को परफेक्शन में ले जाना है, डेफिनेटली ले जाना है, लेकिन थोड़ा टाइम की लिमिट है और हमने आपको आपके टाइम से अब भी टाइम दिया है. सो बहुत बहुत धन्यवाद. और हमारे बीच में एक तीन मिनट के लिए ग्रीटिंग्स देंगे ब्रदर डॉक्टर शंकर नारायणन. ये हार्टफुलनेस मेडिटेशन पर कुछ आपके सामने रखेंगे. ब्रदर तीन मिनट की जगह दो मिनट लो ताकि मेडिटेशन अच्छा हो. इनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे.
ओम शांति एंड हार्टफुलनेस प्रोग्राम्स टू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हियर. एंड ऑफ कोर्स माय टॉक विल बी इन इंग्लिश ओनली. आई कैन अंडरस्टैंड हिंदी बट आई एम नॉट मच फ्लुएंट इन हिंदी, सो दैट आई विल ट्राई टू go in my English language only. And of course my talk will be very academic way. And actually I have to start my expressing my gratitude towards some sisters here, so giving this opportunity to be here. So somewhere few months back we met in neuroscience conference in Bangalore, Sister Chai, and of course with you, and discuss about this seminar. Okay, thought of coming that time, but so many struggles have happened. Anyway, we are here. But at the same time, to be here is a surprise. My professor has to be here, but in his absence, 2 years back, 3 years back, it made to be here. That is a surprise. Anyway, I'll try to brief it in some way about heartfulness meditation. The discussion is very simple. Please, can you? Yeah, please. That is there. So not more than, so I will try to brief very simple way. Hope. So myself, I want to introduce myself. I am Dr. Shankar Narayana, and I am a pediatrician, and I am an assistant professor in Government Medical College, and a heartfulness trainer, and practicing meditation for 20 years, and I am a trainer for 8 years. Of course, being a doctor, not much practicing recently, started this PhD activity, and I am working on pregnant women with meditation. So how the effects or the outcome of pregnancy and on children, how their development, that study is going on right now. So try to brief what are the experience very briefly, and especially basically I will try what are the techniques available in the mindfulness meditation. So regarding so my talk will be very basic level, okay? So I will try to brief very simple, because all discussions happened regarding balance and perfection. Of course, being a doctor, I will discuss very briefly about balance. We require balance any action, right? For any action, we require balance. So for every organ in your body, it has to be work properly, so that your work will be in perfect. It give proper results. Without any balance, nothing will be. So being a doctor, I will talk about disease also sometimes. Health and does disease, right? So ultimately, so we have to practice balance through various tools, whatever the tools may be. It may be Raja Yoga, mindfulness, heartfulness, right? So many tools are there to practice balance, so that we can lead to perfection in life, right? So perfection, especially emotional, mental and spiritual balance, that can lead to the personal growth and of course the holistic well-being, the ultimate goal to reach the divine. So those are various aspects of balance. It the balance in of very mind, body, spirit. So being a doctor, I'll tell you what is the real health. So not just physical. There is the balance between mental, physical, emotional, everything should be in a balance, then only the real health will come. The body is suffering, so definitely you'll get emotional disturbance and mental disturbance will come. Sometimes mental disturbance also can lead to physical elements. There is stress. According to many studies, so the stress can lead to physical elements, like chronic depression can lead to severe back pain, congenital heart disease, many heart diseases. So everything body suffers if there is no balance between these all aspects. So definitely we require the physical health, mental health and emotional health, and finally spiritual health. So we require every aspect. So and there is another aspect, like the balance between the external and internal worlds. So material world and spiritual world. So both things should be there. The balance should be there. Only practicing one thing cannot going to help. You cannot reach your destination. So you have to, both should be maintained properly. Right? So the heartfulness help meditation, of course, any meditation will help balancing of these two things. So many great leaders, gurus are there. They are trying in different ways, their own way. Everyone has their own way, whatever it may be. So like, just like game. Any game that can lead to so development of physical and mental balance, and of course finally so ultimate goal is to reach the ultimate goal, the divine. That is oneness. We think about it. So without oneness there is no spirituality, right? So this is the way our heartfulness meditation also will help, and meditation enhances our ability to mindfully. So there is, without practicing the physical material world, so only practicing the spiritual also cannot give ultimate results. You have to practice both material and spiritual aspects. So and of course emotional balance, it is very much required. Emotional, right? So emotional balance means, so you have to diminish certain attitudes like fear, jealousy. You have to improve, grow compassion, joy, so that the balance will occur. That is emotional balance. So that the personal relationships also. So next, the balance between the action and acceptance. So according to Bhagavad Gita, so you have to do your karma. The result may be whatever it may be. If you think about results only, that can give imbalanced state. Anything it may come. Yes, brother. So balance between the past, present and future. So live in present is we teach. So without thinking of past and guilt and about future of anxiety, that balance should be there. So between the thought and feeling, just now we discussed about that. So feeling, everything should be just like when you say Om Shanti, just like told, you have to feel that Shanti. Then you have to spread that Shanti towards other women. So you have to feel, just coming from mouth is not enough. You have to feel. Right? So thought is nothing but thought and feeling should be there, that the balance should be there. And of course, a progression of balance. Balance is not a static condition, it is a progressive. So it has to be evolved. So now coming to the role of heartfulness meditation, very briefly, there are various tools in heartfulness meditation. That is relaxation one thing, and meditation with transmission is a unique feature of heartfulness meditation, and there is a cleaning and there is a prayer. So relaxation give body and mind relaxation, it prepares to a proper meditation. And of course transmission is a unique feature in the heartfulness meditation. It is a very subtle energy from the higher souls. It will help in deepening of her meditation. And cleaning is removing of emotional burdens and negative tendencies, which help the meditation be very effective. And prayer, so our prayer is like, so the master, you are the real goal. You have desires which are bondage to your progression. So you are the ultimate power and energy to help in this matter. So the soulful prayer which helped to connect to the meditation, which to during 9 o'clock prayer, that is universal prayer, and before meditation, that will make your sleep throughout the night is make soulful. So these are the techniques we have in the heartfulness meditation. And finally, the path to perfection is nothing but balance. So perfection is a journey, it is not a destination. So throughout the thing, throughout the life, it will go on, because it is a vast, it is like a super consciousness, causes like that. So to, it cannot get perfection in one place. Throughout their life, that will expand. Ultimate thing is, it's not just, it's a journey. Right? So this is about heartfulness meditation, and so we are the people here, so we are trying to do so many activities. We are, our sisters also here, we are trying to do, right? So please come here, just 1 minute. We can just tell your things. Right? So we have the principles of holistic growth, peace and personal mastery leading to ideal perfection.
Om Shanti to Priya Bhai and Bhainu. As Dr. Shankar has told about the balance between the pregnancy, between the child and mother, as an heartfulness architect, I just take few seconds to a few lines about architecture. Why is it important? There are four methods, physical, spiritual, emotional and mental methods.
1 minute.
So, I have a poster outside. You can go outside and see. So, there are some findings that include colors, lighting, sound, acoustic, natural element, greenery, and water element. So, overall, giving some guidelines to overall spaces to our practitioners and architects. So, we are having these all in our life. So, finally concluding on one poem, as brother has also said about the consciousness thing and 10x10 kamra wala. So, makan bane hai patthar se, par shanti hai dhyan ki ra. Makan bane hai patthar se, par shanti hai dhyan ki ra. Dono ka santulan jab ho, tabhi saje jeevan ki ra. Om shanti, shanti, shanti.
Thank you so much. अपनी इस पर एक बात याद आ गई ब्रदर, अपनी बात कम शब्दों में कैसे बोलें, इसके लिए कोई स्पीकर लगभग 2 घंटे बोले, तो वो वाली बात को थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे से आज थोड़ा सा आप सभी को मेडिटेशन कराने के लिए आदरणीय नीलिमा दीदी को मैं बुलाना चाहूंगा। 45 साल से इस राजयोग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेडिकेटेड सिस्टर हैं हमारी, और इसमें जो विशेष रूप से दीदी का जो मेंशन है वो मुंबई टू दिल्ली आपने 1200 किलोमीटर की यात्रा की है, यूथ पद यात्रा। ताली नहीं बजा सकते हैं। कितनी अच्छी यात्रा है दीदी, इससे हमारी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, मोटापा कम हो जाएगा हम सबका। और दीदी का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, दीदी बीकॉम है मुंबई यूनिवर्सिटी से, और इतने साल का एक्सपीरियंस आपके साथ मेडिटेशन के साथ शेयर करेंगे दीदी। दिल्ली में
ओम शांति कहिए। ओम शांति। अच्छा यहाँ जो हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, आप थोड़ा बहुत तो सीट भी लिया है, उसमें दो पार्ट्स है, एक है आत्मचिंतन, एक है परमात्म चिंतन। अभी हम दोनों करेंगे। आत्मचिंतन ऐसा है जिसमें हम आत्मा का, मुझ आत्मा का, दूसरी आत्माओं का नहीं, मुझ आत्मा का प्रोफाइल, इंटरनल प्रोफाइल, मेरे में क्या प्लस है, क्या माइनस है, व्हाट आई हैव टू लीव, व्हाट आई हैव टू कीप, व्हाट आई हैव टू डेवलप, ये मैं चेक करती हूँ। और जब मुझे उस बात का पता चल जाता है वेयर आई नीड टू चेंज और व्हाट कैन आई डेवलप, ये करने के लिए जो शक्ति चाहिए, पावर चाहिए, आत्मा का एम्पावरमेंट चाहिए, वो है परमात्म चिंतन। परमात्मा की शक्ति हम अपने अंदर भरेंगे। तो पहला पार्ट जो है आत्मचिंतन। अभी आत्मचिंतन में अनेक 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 बातें हैं, सारी तो हम कवर नहीं करेंगे। पर्टेनिंग टू द टॉपिक टुडे जो हमारा है कि बैलेंस इज द की टू परफेक्शन, सो लेट अस सी हमारे जीवन में कितना बैलेंस है। मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई एक मिनट में आप कर नहीं पाओगे, मुझे भी पता है। यू कैन जस्ट थिंक अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, आपको इस पे पॉन्डर करना पड़ेगा। इनफैक्ट मुझे भी पॉन्डर करना पड़ेगा। ये तो मुझे जो बुद्धि में आई बातें तीन चार मैंने नोट डाउन की, ऐसी अनेक है, स्पेशली अबाउट द बैलेंस। बी केयरफुल, जब मैं आत्मचिंतन करती हूँ मैं सिर्फ आत्मा का चिंतन करती हूँ, शरीर का बिल्कुल नहीं, वो भी सिर्फ इस आत्मा का, उन आत्माओं का नहीं, क्योंकि वे आत्माएं बीच में आएगी। मुझे गुस्सा आता है क्योंकि लोग ऐसा करते हैं, नो, मुझे गुस्सा आता है ये मेरी कमजोरी है, दैट्स इट। तो ये मुझे अपना चिंतन करना है, स्पेशली जीवन के बैलेंस के बारे में। चलिए अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए, बैठे ही होंगे, नहीं बैठे हैं तो बैठ जाइए, और अभी इसको छोड़ना नहीं है। अपने स्थान पर बैठ गए। मैं आत्मा, एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु, भ्रुकुटी के बीच मैं विराजमान हूं। मेरे पार्ट अनुसार मुझे ये कॉस्ट्यूम मिला है अपना रोल निभाने, अपना रोल नहीं, अपने रोल निभाने। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा अनेक रोल निभा रही हूं। लेट अस सी व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ माय लाइफ। सबसे पहला बिग चैलेंज आजकल की दुनिया में चेक करेंगे, मेरी पर्सनल लाइफ और मेरी प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस में है। एक को ज्यादा अहमियत तो नहीं मिल रही है। कीप ऑन चेकिंग। मेरी आंतरिक दुनिया और मेरी बाह्य दुनिया बैलेंस में है, कहीं एक दूसरे से प्रभावित तो नहीं होती। मेरा लेफ्ट ब्रेन और मेरा राइट ब्रेन, माय इंट्यूटिव ब्रेन, माय लॉजिकल ब्रेन, दोनों का संतुलन मेरे डिसीजंस में दिखता है। दिल और दिमाग आपस में सौहार्द से काम करते हैं। और फिर इन्हें चेंज भी करना होगा। मुझ आत्मा को आत्मचिंतन से पता चला कहां कहां बदलना जरूरी है और कहां ना बदलना जरूरी है। लेकिन मैं आत्मा महसूस कर रही हूं, जानते हुए भी कभी कर नहीं पाती। आई नीड सम एम्पावरमेंट, some external support, some external guidance, and I, the soul, go to my dear father, mere pita. मेरे शिक्षक, मेरे गाइड, सर्वशक्तिवान परमात्मा, मेरे ही जैसे अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु, बट ही इज द आइकॉन ऑफ बैलेंस, बिंदु है वो infinite, कोई परिमिति नहीं है, एब्सोल्यूट है, मन और बुद्धि से मैं उनके साथ कनेक्ट होती हूं, मैंने बुद्धि में उनका चित्र बनाया, मेरा मन उन पर सोचने लगा, बस जैसे ही ये दो बातें हुई, मैं धीरे धीरे उनके समान बनती जा रही हूं, जो मैं देखती हूं उस पर मैं सोचती हूं, और जो मैं सोचती हूं वही मैं बनती हूं, इतना सिंपल है, बस. Now and then I will do this process. Now and then I'll empower myself. सर्वशक्तिवान की सारी शक्तियां मेरे अंदर भरती जा रही है. चेक भी किया, चेंज भी अवश्य करूंगी. I promise to my father and I promise to myself. अब से लेकर मेरी जीवन मेरे पिता समान संतुलित होगी, absolutely balanced and so perfect. कोई defect नहीं, just perfection. And so my life will become a celebration soon. Ek ek pal celebration. Om Shanti.
Shanti, thank you, Didi. आपने बहुत कम समय में बहुत अच्छे एक्सपीरियंस कराए. लास्ट में जैसे कहा जाता है, दीदियों ने इतना अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया, इसको सम अप करने के लिए छोटी सी बात जरूर कहना चाहेंगे कि कहा जाता है कि इस दुनिया में हर एक शख्स हादसा होने से डरता है, बना खुद मिट्टी का है लेकिन फना होने से डरता है. मेरे दिल के एक कोने में एक छोटा सा बच्चा है, बड़ों की हरकतों को देखकर बड़ा होने से डरता है. सो आज मैं ये सोच रहा था कि बाबा ने, परमात्मा ने हम सबको इतना अच्छा जीवन दिया, तो एक लाइन लास्ट की याद आती है कि जब तुमसे मोहब्बत की हमने तब जाके कहीं मालूम हुआ, और मरने का सलीका आते ही जीने का सऊर आ जाता है, जब तुम मुझे अपना कहते हो तो अपने पर गुरूर आ जाता है. तो वो एक इतना सुंदर ये चीज है, इसलिए अपने आप को ऐसे बैलेंस करेंगे. सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे हम चाहते हैं कि हमारी दीदी, हमारे धर साहब को और हमारे नारायण जी को बाबा की तरफ से गिफ्ट